السلام علیکم حضرات, ہم سب آئے دن دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ فلسطین مسئلہ ہے اور بہت سنگین مسئلہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص نوجوان اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ یہ مسئلہ دراصل ہے کیا, یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کی کیا اہمیت ہے اس مسئلے کی, اور اسے کیوں میں آپ اور ہم سب اور دنیا کے جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان کا اس مقام سے کیا تعلق ہے القدس سے, اس بارے میں. اور جب یعنی میں نے اپنی 20 سالہ صحافتی زندگی میں, خاص طور پر جو اسپیشلائزیشن میرا رہا ہے پچھلے 10 سال میں عالمی خبروں کے حوالے سے, اس دوران اور مطالعے کے دوران میں نے اس مسئلے کے بارے میں کیا سیکھا کیا جانا, وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے, ہماری دنیا میں کئی مسائل ایسے ہیں جو امپیریل پاورز جو تھے 19ویں صدی میں یا 20ویں صدی کی ابتدا میں, ان کے چھوڑے ہوئے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ بھی ویسا ہی ایک مسئلہ ہے جس طرح دوسرے مسائل بھی ہیں دنیا میں. مثال کے طور پر کشمیر کا مسئلہ ہے, وہ بھی ایک ہندوستان, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ برطانیہ کی ایک کالونی تھی, نو آبادی تھی. اسی طرح کشمیر کا مسئلہ انہوں نے دوسری عالمی جنگ کے بعد ہندوستان اور دنیا کے دیگر ممالک سے جاتے جاتے جو آنن فن وہ چلے گئے, کیونکہ وہ اس زمانے میں دوسری عالمی جنگ کے بعد مینیج نہیں کر پا رہے تھے اپنی کالونیز کو, اور ان کے پاس وسائل اور طاقت اور دمخم نہیں تھا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو ویسا ہی چھوڑ دیا جو 70 سال سے رس رہا ہے. یہی حال فلسطین کا ہے اور دوسرے بھی کئی مسائل ہیں. کردوں کا مسئلہ ہے, دیکھیے آٹومن امپائر یا خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد, یا خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا تھا اس کے بعد, اور کئی ممالک وجود میں آئے تھے, کئی نیشن سٹیٹس بنے تھے, قوم اقوام یعنی قومیتوں کی بنیاد پر ممالک بنے تھے. ان میں کردستان کا ایک مسئلہ ہے, کرد بھی کئی مقامات پر بٹے ہوئے ہیں, ترکی میں, عراق میں, سیریا میں, ایران میں وغیرہ. بہرحال یہ تمام مسائل جو ہے ہماری بڑی طاقتوں کے جو سپر پاورس رہی ہیں, خصوصاً برطانیہ, ان کے چھوڑے ہوئے مسائل ہیں. اور فلسطین کا مسئلہ دراصل کیسے شروع ہوا, دیکھیے ایک ٹرم ہے جسے زائنزم کہتے ہیں, اردو میں صہیونیت کہتے ہیں. یہ یعنی دیکھیے 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کی ابتدا میں یہ زائنزم ایک نظریہ ہے, کانسیپٹ ہے, اس کی ابتدا ہوئی. یہ ایک چند مٹھی بھر لوگ تھے جن کے اپنے بعض کھلے اور بعض پوشیدہ مقاصد تھے, معاشی مقاصد بھی تھے اور جغرافیائی مقاصد بھی تھے, اور ان لوگوں نے ایک حسین نعرہ دیا کہ یہودی لوگ جو دراصل یعنی یہودی جن کو ہم کہتے ہیں, بالخصوص آج کے جو یہودی ہیں وہ اصل حقیقی یہودی نہیں ہیں بلکہ یہ یورپی یہودی ہیں. دیکھیے آپ جو اصل یہودی ہیں, نسلاً یہودی ہیں, ان کو دیکھ لیجئے, اور آج کے جو زیادہ تر یہودی ہیں ان کے چہرے دیکھ لیجئے, ان کے ناخن نقشے خد و خال دیکھ لیجئے, یہ الگ ہیں. انہیں بالخصوص اشکنازی جیوز کہتے ہیں. ایک اس کی الگ تاریخ ہے, خزاریہ ایک مقام تھا, اور ان لوگوں نے جو ہے سیاسی مقاصد کے لیے یہودی مذہب اختیار کیا تھا, اگرچہ بنیادی طور پر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے مولانا بہتر جانتے ہیں کہ ان میں تبدیلی مذہب نہیں ہوتا. بہرحال کچھ ایسے مسائل تھے کہ انہوں نے یہ مذہب اختیار کیا. بہرحال انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ زائنسٹ تحریک یا صہیونی تحریک شروع کی تھی, اور انہوں نے بہت حسین نعرہ دیا تھا کہ لینڈ وداؤٹ پیپل, لینڈ وداؤٹ پیپل فار پیپل وداؤٹ لینڈ, یعنی ایسی زمینیں جہاں پر جو غیر آباد ہیں وہاں پر ان لوگوں کو بسایا جائے جن کے پاس زمین نہیں ہے, جو دنیا میں بکھرے پڑے ہیں, خاص طور پر جو ان کی نظر میں جو یہودی ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے, اور ان کی دانش میں ان پر زیادتیاں بھی ہو رہی تھیں. تو ان لوگوں کے لیے ایک ملک بسانے کا ان کے ذہن میں خیال آیا, اور اس کے لیے فلسطین بھی ایک جگہ تھی. اس کے علاوہ دنیا میں کئی دوسرے ممالک ہیں جہاں پر وہ اپنے اس تخیل کو یا خیال کو عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے. ان میں ارجنٹائن کا ایک مقام تھا, ارجنٹائن, اور افریقہ کا ایک ملک ہے یوگانڈا, وہاں پر بھی یہ لوگ اپنا جو مملکت ہے اسرائیل کے نام سے وہ بنانا چاہتے تھے. लेकिन ये हो नहीं पाया। और आखिर में इसी असना में ये जो कश्मकश चल रही थी और इनकी जो मनसूबाबंदी चल रही थी कि इनका अपना कोई वतन हो यहूदियों के लिए, इसी असना में पहली आलमी जंग छिड़ गई। और पहली आलमी जंग में इन लोगों ने जो वसायल से मालामाल थे, आज भी हमारा जो माली निज़ाम दुनिया का है वो इन्हीं यहूदियों या सहियोनियों का दिया हुआ है और हम उसी पर अमल करते हैं, और उस ज़माने में भी ये लोग मौशी एतबार से और वसायल के एतबार से अगरचे कम थे, मुट्ठी भर थे, लेकिन इनके यानी वसायल पर इनका कब्जा था। इन्होंने आलमी जंग के दौरान जो बुनियादी तौर पर दो फरीक थे, एक तरफ थे वेस्टर्न पावर्स जहाँ पर जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया जिसको कहते हैं, बुनियादी तौर पर ये तीन फरीक थे, और दूसरी तरफ सेंट्रल एलाइड पावर्स थे जिनमें बरतानिया और फ्रांस और यूएसएसआर या रशिया, और यूएसएसआर का नाम उस वक्त नहीं पड़ा था, रशिया ही था, वो जार का रशिया था जहाँ पर बादशाहत थी। बहरहाल तो ये जो यानी एलाइड पावर्स थे, इन जो यहूदियों या ज़ायनिस्टों ने इन दोनों को फंडिंग की, बिलखसूस एलाइड पावर्स है बरतानिया फ्रांस और ये जो ग्रुप था, इन लोगों की उन्होंने फंडिंग शुरू की, और उन्होंने फंडिंग करते हुए कुछ वादे लिए, खुफिया वादे। इन्हीं वादों के तहत दूसरी आलमी जंग के अख्तितामी मराहिल में 1978 में इसराइल का के वजूद की इब्तिदा हुई। 1918 में बाल्फर डिक्लेरेशन के नाम से बरतानिया ने वादा किया था। उस वक्त तक जंग के नाक नक्शे वाजे हो गए थे कि कौन फतेह हासिल करने वाला है, ये बात तय हो गई थी कि जो एलाइड पावर्स है बरतानिया फ्रांस वगैरह हैं, ये लोग आलमी जंग में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। तो बरतानिया के वजीर खारजा का नाम उस वक्त बाल्फर था, तो बाल्फर ने एक कागज़ का टुकड़ा जारी किया जिसे बाल्फर डिक्लेरेशन कहते हैं, और वही जो है इसराइल की बुनियाद बना। बाल्फर डिक्लेरेशन इसराइल की बुनियाद है, और इसके बाद ज़ायनिस्टों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो माइग्रेशन था यूरोपीय ममालिक से और दुनिया के दीगर मकामात से, उन्होंने यहूदियों को जमा करना शुरू किया फ़लस्तीन में। उन्होंने यानी भारी भारी कीमतें देकर ज़मीनें हासिल की, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फ़लस्तीनी इलाकों में, अरब इलाकों में आबादी का तनासब बदलने की कोशिश की, और काफ़ी तादाद जो पहले समझिए कि पहले यहूदी जो नस्लन यहूदी सदियों से वहाँ पर आबाद थे फलस्तीन में, कमोबेश उनकी आबादी वहाँ पर 5% थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगी। पहले तो उन्होंने ज़मीनें खरीदी, इसके बाद वो डराने धमकाने लगे, और देखिए कि उनकी उस वक्त खानगी लश्कर थे, आर्मीज़ थे, जिनके नाम मैं समझता हूँ कि एक इरगुन नाम था, इरगुन और बहुत ज़ालिम, और इरगुन और एक हगाना नाम की एक, मैं कहता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट यानी एक आर्मी नहीं बल्कि एक दहशतगर्द तंजीमें थी ये, जो लोगों को दहशतज़दा करते थे, लोगों को बम धमाके, देखिए आज हम बॉम्ब ब्लास्ट का सुनते हैं, ज़्यादातर मुसलमानों पर जो है इल्ज़ाम आयद होते हैं कि वो बम धमाके करते हैं, लेकिन उस ज़माने में इन लोगों ने धमाके किए, इन लोगों ने धमाके किए, और ये लोग पहले तो अंग्रेज़ों के साथ थे, मिलकर उन्होंने साजिशें की, और जब अंग्रेज़ों पर दबाव बढ़ने लगा अरबों का कि वो माइग्रेशन को कम करें, लेकिन उन्होंने इस सूरत में अंग्रेज़ों से भी मुखालफत मोल ली, जो उस वक्त खिलाफत उस्मानिया टूटने के बाद काबिज़ हो गए थे ऑटोमन एम्पायर के ज़्यादातर मकामात पर, तो उन्होंने माइग्रेशन जो बहुत बढ़ रहा था उसको रोकने की जब अंग्रेज़ों ने कोशिश की, तो उन्होंने अंग्रेज़ों पर भी सुसाइड अटैक्स किए, इरगुन और हगाना के जो दहशतगर्द तंजीमें थी, और उसके बाद मुसलमानों से भी उनकी लड़ाइयां होती रही, और डरो खौफ का माहौल ऐसा पैदा किया कि मुसलमान लाखों की तादाद में वहां से फलस्तीनी इलाकों से वहां से जाने लगे, और दूसरी तरफ यहूदियों की आबादी बढ़ने लगी जो दुनिया के गोशे गोशे से बिलखसूस यूरोपीय ममालिक से वहां पर पहुंचने लगे। अब देखिए आपने सोचा होगा अक्सर हम आप टेलीविजन पर और अखबार में देखते हैं कि इसराइली फौज इतनी जालिम क्यों होती है, इसकी वजह मैं बताता हूं कि यह कोई प्रोफेशनल आर्मी से ज्यादा इसकी जो बुनियाद है, जो इरगुन थी जो दहशतगर्द तंजीम थी, और जो हगाना थी जो दहशतगर्द तंजीम थी, वही इसराइल 1948 में बनने के बाद ये जो है आर्मी बन गए, इसराइली आर्मी में तब्दील हो गई ये इरगुन और ये दहशतगर्द तंजीमें। इसकी वजह से उनकी जो जहनियत थी, दहशतगर्द यानी मेंटालिटी थी, वो बरकरार रही, और वो इसका सिलसिला आज तक जारी। एक और वजह, यहूदी आमतौर पर अपने आप को बहुत आला अरफा समझते हैं, और दूसरों को, उनके पास एक इस्तेलाह है जेंटल्स कहते हैं, जेंटल्स यानी गैर यहूदी, या उनकी नज़र में गैर यहूदियों के कोई हकूक़ नहीं होते, वो बिल्कुल हशरात अर्ज़ के मानंद होते हैं, उन पर यानी वो जुल्म करने को भी जायज़ समझते हैं, उनके बच्चों को हलाक करने को भी जायज़ समझते हैं, और ऐसी बहुत सारी नेगेटिव टेंडेंसीज उनमें पाई जाती हैं। बहरहाल उनका एक और जुल्म का नमूना मैंने कल ही देखा। कल इसराइली पार्लियामेंट में एक अरब रुकन ने एक लॉ, एक बिल पेश किया जिसमें कहा गया था कि गैर यहूदियों स्पेशली अरबों को भी मसावी हुकूक, बराबरी के हुकूक दिए जाएँ, लेकिन इसराइली पार्लियामेंट ने सेट ने उस बिल को मुस्तरद कर दिया। ये दुनिया की वाहिद रियासत है जो पैदाइश की बुनियाद पर आदमी और आदमी में फ़र्क करती है। ये हकीकी मायनों में एक नस्ल परस्त रियासत है इसराइल, वो दूसरों को कोई हक नहीं देती। पहले हम बात कर रहे थे कि पहली आलमी जंग के बाद ऐसा माहौल था और माइग्रेशन हुआ, और इसी असना में दूसरी आलमी जंग छिड़ गई, और दूसरी आलमी जंग में ऐसा कहा गया कि यहूदियों का कत्लेआम हो रहा है बड़े पैमाने पर, ख़ासतौर पर जर्मनी में, और हिटलर इसके लिए ज़िम्मेदार है। उसे होलोकॉस्ट कहते हैं। होलोकॉस्ट का हवा खड़ा किया गया। हो सकता है कि कुछ मजालिम हुए हों, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। और जो है अगर मैं मान लूं या आप मान लें कि होलोकॉस्ट हुआ भी था और यहूदियों पर जुल्म हुआ, तो ये कौन सा इंसाफ है कि यूरोपियंस ने जुल्म किया यहूदियों पर और उसकी सजा अरबों को या फलस्तीनियों को और मुसलमानों को दी जाए? दुनिया का कौन सा इंसाफ इसकी मुदाफियत कर सकता है? सज़ा फ़लस्तीनियों को क्यों दी जा रही है और इज्तमाही सज़ा दी जा रही है? उन्हें क्यों उनके घरों से निकाला गया? उनसे क्यों उनके इंसानी हुकूक़ छीने गए? ये एक यानी रहती दुनिया तक ये एक इंसानियत के नाम, इंसानियत के सामने एक सवाल रहेगा। मैं मिसाल देता हूँ फ़लस्तीन का जो मसला, लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मसला क्या है, तो मैं उन्हें आम अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपका एक घर है और कोई अचानक आ धमकता है वहाँ पर बड़ी तादाद में, और आपसे कहता है कि 2-3 हज़ार साल पहले मेरे आबा व अजदाद यहाँ पर रहते थे और खुदा ने मुझसे कहा या मैंने ख्वाब में देखा कि ये मेरा घर है, मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो फ़लस्तीन का मसला वैसा ही मसला है कि आपके घर में कोई आ धमका और कहने लगा कि मेरे आबा व अजदाद 2-3 हज़ार साल पहले यहाँ रहते थे और यानी अल्लाह ने कहा है मुझसे या खुदा ने मुझसे कहा है कि ये मैं ये घर तुम्हें दूँगा। तो ये ऐसे ही बात है कि जिस तरह हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज ने जो आस्था की बुनियाद पर फैसला सुनाया, जिसे मायरीन कानून भी बड़ा अहमकाना फैसला कहते हैं, कि ये प्री हिस्टोरिक बातें या अकीदों की बातों की बुनियाद पर, मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं एक मुसलमान की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसान की हैसियत से और सोचने समझने वाले इंसान की हैसियत से बात कर रहा हूँ, और ये दुनिया में बदतरीन नाइंसाफ़ी है। बहरहाल दूसरी आलमी जंग ख़त्म हुई गालिबन 1945 में, और 3 साल के अरसे में इसराइल का वजूद हुआ, क्योंकि बरतानिया जो जंग जीतने वाली क़ुव्वत थी उसने वादा किया, खुफिया वादा इसराइलियों से, यहूदियों से किया था, और उन्हें इसराइल के नाम से एक मुमलिकत अता कर दी गई। और उसी ज़माने में जो अफरा तफरी का आलम था दूसरी आलमी जंग के बाद, उसी वक्त जो है इसराइल के साथ साथ फ़लस्तीन की रियासत बनाने का भी वादा किया गया था कि हम फ़लस्तीन की रियासत भी बनाएंगे, लेकिन आज 70 साल हो गए, वो फ़लस्तीन रियासत का वादा आज तक पूरा नहीं हो सका, और ये एक संगीन मसला बना हुआ है। न सिर्फ ये बल्कि उसके जुल्मों से तम बढ़ते जा रहे हैं, और जो 2-स्टेट सॉल्यूशन या 2 रियासती हल की बातें की जाती हैं कि इसराइल के साथ साथ साइड बाय साइड एक फ़लस्तीनी रियासत बने, ये मुझे जो है ऐसा ही लगता है कि गालिब ने कहा था कि यानी दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, और साहिल लुधियानवी ने भी कहा था कि ये जश्न, ये हंगामे खिदमत है कि साजिश है, कुछ लोगों की साजिश है कुछ लोग बहल जाएं। तो ये कोई ऐसा ही मामला है कि आज तक 70 साल गुजर गए हैं, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, और जो रंग ढंग जो तैवर इसराइलियों के नज़र आते हैं वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, वो कभी तैयार नहीं होंगे कि 2 रियासती हल बनाएं, बिल्कुल नहीं। और देखिए उनका जुल्म सितम की जो इंतहा है, देखिए किस तरह गाज़ा के हालात आप देखें, मैं समझता हूँ कि आज गुज़िश्ता 12 साल से सबसे संगीन अगर कोई मसला है दुनिया का तो वो गाज़ा का मसला है। चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है, कोई चीज़ इसराइल की मर्ज़ी के बगैर आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, कोई आदमी आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, वहाँ ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलतें नहीं हैं, दवाएँ नहीं हैं, और लोगों को खुली जेल में रहने के लिए अमदन जो है मजबूर किया गया है। ये कैसा है, और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई। ये हुआ 2007 में गाज़ा से, और क्यों हुआ? हमास ने इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की, हमास ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और अमेरिका को पसंद नहीं है हमास का जीतना इलेक्शंस में, यानी ये जमहूरियत के लोग चैंपियन बने फिरते हैं अमेरिका, इसराइल और दुनिया के कई बड़े ममालिक, लेकिन उन्हें जब उनकी मुखालिफ ताकत इलेक्शंस के ज़रिए कामयाबी हासिल करती है तो वो उन्हें पसंद नहीं आता, इसके बजाय वो शाहियों के साथ जो है अपने राह रस्म बढ़ाते हैं और उनके साथ अपने मफादात पालते हैं। बहरहाल अक़वाम मुत्तहदा और पूरी दुनिया गाज़ा जो सीज है, गाज़ा की नाकाबंदी है उसको हटाने में नाकाम रहा है। और देखिए इसराइल के जुल्म की दास्तानें हम आए दिन पढ़ते हैं। दो तीन दिन पहले मैंने आप सब ने देखा होगा अगर आप फॉलो करते हैं तो, कि एक नर्स गाज़ा की सरहद के करीब एक यानी एक जख्मी का कुछ इलाज कर रही थी और उसे गोली मार दी गई। एक नर्स, वो तो कोई कॉम्बैट नहीं थी, वो कोई लड़ाका नहीं थी, लेकिन उसे मार दिया गया। ऐसे कई वाकयात, कल की बात है कि बड़े क्लोज रेंज से गर्दन पर तीन गोलियां कल ही एक फ़लस्तीनी को मारी गई। तो उसके जुल्म की दास्तानें तो ऐसी है, ये उसी इरगुन जो दहशतगर्द मेंटालिटी है उसी का नतीजा है। और इसके अलावा आप सबको याद होगा रैशल कोरी एक बहुत बाज़मीर खातून थी मगर अमेरिका की, उसने फ़लस्तीनियों का दुख दर्द महसूस किया और फ़लस्तीनियों के लिए डट गई, लेकिन उसे टैंक से रौंद दिया गया। तो ये वही दहशतगर्द इसराइल है जो दूसरों को दहशतगर्द करार देने की कोशिश करता और इसमें कोई यानी दकीका नहीं छोड़ता। ये तो बात हुई कि दुनिया नाकाम हो गई, यूनाइटेड नेशंस नाकाम हो गया फ़लस्तीन का मसला 70 साल से हल करने में, और देखिए गज़ा का सीज जो नाकाबंदी है वो 2007 में गालिब हुआ, तो 11 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं, तो दुनिया नाकाम हो गई। अब देखते हैं कि मैं आप मुस्लिम दुनिया क्या कर रही है और मुस्लिम दुनिया की अलामत के दावेदार क्या कर रहे हैं। इससे पहले मैं कहूँगा कि जो आमतौर पर अरब इसराइल जंगों का हवाला दिया जाता है तो आमतौर पर यह तासुर उभरता है कि तमाम अरब ममालिक ने शायद इसराइल से मुकाबला किया। ये बिल्कुल गलत बात है। इसराइल अरब जंग का मतलब यह है कि एक तरफ इसराइल था और दूसरी तरफ इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन, यही अरब इसराइल जंग थी, कोई सऊदी अरब वहां पर नहीं था। अरब इसराइल जंग का मतलब इजिप्ट, ये हुस्नी मुबारक का इजिप्ट या अब्दुल फतेह अल सीसी का इजिप्ट नहीं, वो जमाल अब्दुल नासिर का इजिप्ट था और अनवर सादात का इजिप्ट था, और दूसरी तरफ यही बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद का सीरिया था। और बहरहाल अब जो है हमारे दरमियान जो लीडरशिप का शौक़ रखने वाले ममालिक हैं, मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप सऊदी अरब है और तुर्की है, इन लोगों का संजीदा रवैया नहीं है, इन लोगों की मुनाफिकत है, दिखावा है, क्योंकि हम सब जानते हैं, मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि उनके मफादात जुड़े हुए हैं, अंडरहैंड डीलिंग्स हैं इन लोगों की। और मुझे याद आता है तैयब एर्दोगान साहब बड़े हमदर्द बने फिरते हैं मुस्लिम दुनिया के, लेकिन हकीकी उनका ज़बानी जमा खर्च ज़्यादा होता है। मुझे याद है 6 दिसंबर 1917 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो यरूशलम या अलकुद्स को इसराइल के दारुल हुकूमत की हैसियत से तस्लीम करेंगे, उस वक्त तैयब एर्दोगान का बयान था, उससे पहले एक दो दिन पहले जब ऐसे इशारे मिल रहे थे कि ट्रंप ऐसा ऐलान कर सकते हैं कि खबरदार ये रेड लाइन होगा, ये ऐलान होकर 7-8 महीने हो चुके हैं या 6 महीने से ज़ायद हो चुके हैं और उस पर अमल भी हो चुका है। मई के महीने में 14 मई को यौम नकबा यानी तबाही का दिन जो हम मनाते हैं, फ़लस्तीनी मनाते हैं, उस दिन अमल हो चुका है, लेकिन क्या हुआ, रेड लाइन कहने वाले क्या करें। आज भी कल की बात है, उन्होंने सीरिया के ताल्लुक से मनबिज में फ़ौज हटाने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया तैयब एर्दोगान ने। इसके अलावा इसराइल के साथ उन्होंने ज़रूर सलाह मशवरे के लिए अपने सफीरों को, आप उस बयान को देखें कि आरजी तौर पर लिखा हुआ है उसने, आरजी तौर पर अपने सफीरों को वापस बुलाया, लेकिन आज भी तुर्की के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं और अंडरहैंड डीलिंग्स हैं। तो अब कौन सी रेड लाइन का इंतज़ार है, अलकुद्स जो हमारे लिए यानी एक, अगर मैं बात करूँ मुसलमानों की तो उनका क़िबला अव्वल है और वहाँ से अल्लाह के रसूल मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे। बहरहाल ये इतना मुक़दस मकाम है और उस पर उसे इसराइल का दारुल हुकूमत करार दिया गया, हम किस रेड लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए कि यानी अरब स्प्रिंग जो कहते हैं, अरब बहार जो 2011 के बाद आई थी और उसी का तसलसल है सीरिया जंग, सीरिया जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कोई है तो वो इसराइल है, क्योंकि 2011 में जो सीरिया जंग शुरू हुई थी या अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी, जिसे मैं अरब बहार के बजाय अरब खिजां कहना ज़्यादा पसंद करूँगा, तो उस अरब खिजा में जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो इसराइल है, क्योंकि इसराइल फ़लस्तीन का जो मसला है, फ़लस्तीन का मसला 2011 के बाद से दुनिया के एजेंडे से बाहर हो गया, कोई फलस्तीन मसले की बात नहीं कर रहा है, कोई इसे संजीदगी से नहीं ले रहा है, और हम आलम इस्लाम में एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये इसमें इसराइल का मफाद है, और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इसराइल सिर्फ इसका बेनिफिशरी नहीं है बल्कि इसका अरब स्प्रिंग या सीरिया जंग का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और इसकी यानी जितने यानी प्रॉक्स इसराइल ने अपने इत्तेहादियों के साथ, जिनमें अमेरिका भी शामिल है और मुझे कोई आर नहीं है कहने में कि सऊदी अरब भी शामिल है, उसके प्रॉक्सीज सीरिया में लड़ रहे थे बशार अल असद के खिलाफ, लेकिन हम जज्बात का धेड़वाड़ा खड़ा करके जज्बात की नज़र से, जज्बात के एंगल से मसाइल को देखते हैं। तो लेकिन आज देखिए, आज हम देख रहे हैं जो भी साहिब नज़र लोग हैं कि आज दुनिया में इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी बहुत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि जो प्रॉक्सीज इसराइल के छोड़े हुए थे सीरिया में, उन्हें शिकस्त हो गई। अब दोनों आमने सामने, ईरान और इसराइल। और मैं अक्सर हमारे दोस्तों से कहता हूँ जो पूछते हैं कि वो कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोल्ड वार है, उसके नतीजे में ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये कोल्ड वार या सरजंग ईरान और सऊदी अरब के दरमियान नहीं, बल्कि ईरान और इसराइल के दरमियान है। और मुझे ये कहने में भी कोई आर नहीं है कि इसराइल का नेचुरल एलाई या फितरी इतिहादी सऊदी अरब है। और इसकी वजह मैं बताऊँगा कि दोनों मगरिब की पैदावार हैं, दोनों ऑटोमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया के मलबे पर बने हैं। अगर आप तारीख का जायज़ा लें तो दोनों में कई मुमासलतें हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ईरान मगरिब की मवाफ़त पे नहीं बल्कि मगरिब की मुखालफत की बुनियाद पर बना है। आप 1979 के इनकलाब की तारीख पढ़ें, ईरान मगरिब की मुखालफत की बुनियाद पर बढ़ा है। और ईरान का जो नज़रिया है ईरान सऊदी अरब की शाही हुकूमत की चूल्हें हिलाता है, ख्याल भी, क्योंकि ये ख्याल जब पनपेगा उभरेगा तो फिर उनकी यानी उनका तख्तोताज जाता रहेगा। और जब फ़लस्तीन के मसले की तरफ वापस आते हैं कि फ़लस्तीन के ताल्लुक से अगर मुझे कोई संजीदा नज़र आता है, कंसिस्टेंट कोई है, तो वो ईरान है। देखिए, ईरान मुसलसल अलकुद्स डे मनाता है तवील अरसे से, मैं समझता हूँ कि 15-16 साल तो हो चुका होगा, और 79 से ही मना रहा है। तो देखिए, इतने साल हो गया कि वो इतनी कंसिस्टेंसी से मना रहा है, इस तरह की महफिलों का इनेकाद होता है। और जो है, जो इसराइल अगर किसी से खौफ खाता है तो वो हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला को किसने बनाया? ईरान ने बनाया। ये वही हिजबुल्ला है जिसने 2016 की जंग में, 2006 की जंग में इसराइल के दांत खट्टे कर दिए थे। इसराइल ने बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड अपनी शिकस्त का एतराफ किया है। उसने कहा है कि हम अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं, हमास फाते रहा है। और इसके अलावा अगर इसराइलियों के खिलाफ कोई डटकर खड़ा हो रहा है तो वो हमास है, इस्लामी जिहाद। आप मुझे बताएं कि जो रॉकेट्स हैं हमास के, इस्लामी जिहाद के, पेंसिल नुमा रॉकेट मैं कहूँगा, लेकिन वो पेंसिल नुमा रॉकेट भी उसे किसने दिए हैं? किसने मदद की, अस्करी मदद? हमास की, ईरान ने की है। तो एक कंसिस्टेंसी है, और इससे खुलूस और संजीदगी भी ज़ाहिर होती है। किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इस्तेक़लाल बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल, अब ये मसाइल हैं, बड़ा संगीन मसला है। इसका हल क्या हो सकता है, फ़लस्तीन मसले का हल क्या हो सकता है, और मुझे और आपको इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में मेरे ख्याल में मुज़ाहमत की ताकतों को मजबूत करना चाहिए। मुज़ाहमत यानी रेसिस्टेंस, चाहे वो हमास हो या कोई भी वो ताकत हो जो इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी होती है, किसी भी महाज पर, मौशी महाज पर, अस्करी महाज पर, या किसी और महाज पर, या समाजी महाज पर, तो उन मुजाहमत की ताकतों को मजबूत करना चाहिए। मेरा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है। इसके अलावा राय आमा बनानी चाहिए। लोगों के पास बहुत गलत फहमियाँ हैं फ़लस्तीन के ताल्लुक से। मैं मेरी ज़िंदगी के एक वाक़े का हवाला देना चाहूँगा कि 1991 की बात है, मैं कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, मैं तालिबे इल्म था, तो गन फाउंड्री के पास वहाँ पर एक बिरादर वतन मेरे दोस्त थे, वहाँ पर उस वक्त रमाला के फ़लस्तीन अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में महमूद अब्बास को इसराइल ने महसूर कर दिया था, सीज कर दिया था। तो अखबारों में मुसलसल खबरें आ रही थी, वो शख्स बोल रहा था कि कौन है ये दहशतगर्द जो अंदर बैठा हुआ है, हालांकि उसे बताने की ज़रूरत थी कि दहशतगर्द वो नहीं है बल्कि सीज करने वाले हैं, दहशतगर्द खाबिज गासिब इसराइल है, फ़लस्तीनी नहीं है। तो ये इस ताल्लुक से राय आमा बनानी चाहिए, अखबारात के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, हर फोरम के ज़रिए जो मुझे मैसर आता है, आपको मैसर आता है। इसके अलावा यानी सबसे अहम बात, मौशी मसाइल, मौशी महाज पर इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि इसराइल की तरफ से कौन से प्रोडक्ट आते हैं। देखिए ये यानी जो मौशी ये दुनिया है, मईशत का मौजूदा नज़रिया है, वो सिहियोनियों का ही दिया हुआ है, और सबसे ज़्यादा उन्हें मार वहीं पड़ेगी, मौशी महाज पर ही पड़ेगी। तो हम सबको ये जानना चाहिए कि इसराइल के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और उनकी नफ़ी करनी चाहिए, और उनके ख़िलाफ़ काम करना चाहिए, और सबको मिलकर बॉयकॉट करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक का है, हमने जिक्र किया सऊदी अरब और वगैरह वगैरह, तुर्की वगैरह, इनका अगर दुआ कीजिए कि इनके रवैये में संजीदगी नज़र आए, लेकिन फ़िलहाल तो इनमें कोई संजीदगी नहीं, बल्कि इनका रवैया मुनाफिकत से भरा हुआ है। मेरे एक दोस्त कहते हैं कि देखिए दुनिया में कोई दरमियानी रास्ता नहीं हो सकता, आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप लकीर के किस तरफ हैं, आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। मेरे एक दोस्त कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है और दोजख बनाई है, कोई दूसरा दरमियानी रास्ता नहीं बनाया। तो यू शुड डिसाइड विच साइड ऑफ द लाइन आर यू। जी तो मौलाना वजाहत करेंगे इस बारे में, शायद मैं कमिल आदमी हूँ बिलखसूस इस हवाले से। बहरहाल और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दुनिया का निज़ाम है, बैंकिंग सिस्टम, अमेरिकन ड्रीम, और जितने भी मौशी मसाइल और मादा परस्ती, मटीरियलिज्म, जिसमें हमारा रुआं रुआं जो है फंसा हुआ है, ये सब उसी सहियोनियत और इसराइल या उस जहनीत के लोगों की देन है। तो आखिर में मैं एक शेर, काफ़ी तवील हो गई तकरीर और मुझे भी जाना है, एक शेर पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए।